सब बाकी लोग फिर म्यूट कर लें, मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया है। चले तो बात ही हो रही थी कि कल जो उलमाए, अच्छा यहाँ इनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ बिकॉज इनका, जी, जज़ाकअल्लाह। तो थोड़ा सा रिकैप ये कर देता हूँ कि अभी जो है वो हम जो औरतों के ऊपर अहकाम हिजाब हैं, तो उनके रास्ते में जो मुखालिफ कुवतों का औरतों को सामना करना पड़ता है, तो वो कुवतें कौन कौन सी होती हैं? तो उनमें सबसे बड़ी कुवत और मुश्किल कुवत जिससे के डील करना सबसे मुश्किल काम है, वो उलमाए सू और उलमाए बातिल की कुवत होती है। ये उलमाए बातिल और सू वो होते हैं, एक और मैं जवाब पढ़ लूँ, कि शरिया से हट के काम करने वाले उलमाए सू होते हैं। नहीं, ये तारीफ नहीं बताई थी आप लोगों को, तारीफ आप लोगों को ये बताई थी कि दुनियावी मफाद की खातिर जो शरीयत के अहकामात को तब्दील कर देते हैं, ठीक है, दुनियावी मफाद की खातिर के उनको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, कोई हुकूमती मनसब और ओहदा मिल रहा होता है, ठीक है, कि जी सुल्तान ने उनसे कहा, जो अमीर था मुल्क का, उसने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे इस नाजायज काम के हक में फतवा दे दो तो मैं तुम्हें इतना रुपया भी इनाम में दूंगा और मैं तुम्हें अपनी हुकूमत के अंदर इतना बड़ा ओहदा भी दे दूंगा। तो अब इस ओहदे और इस रुपये की खातिर इन साहब ने उनके इस गैर जो बादशाह था उसके गैर शरी काम के हक में फतवा दे दिया कि हाँ जी ये काम जो है वो बिल्कुल जायज है। जैसे कि अकबर बादशाह ने सजदा जो है वो स्टार्ट कराया था अपने दरबार के अंदर, तो उस जमाने में कुछ उलमाए बातिल थे कि जिन्होंने बाकायदा फतवा दिया था कि ये सजदा बादशाह को करना हलाल है, ठीक है। तो किस लिए दिया था? क्योंकि बादशाह से उनको मराहत मिलती थी, बादशाह से उनको मनसब और ओहदा और रुपया पैसा मिलता था। तो ये डेफिनेशन होती है उलमाए बातिल की। तोड़ मरोड़ कर पेश करना जो है ना, ये तो कोई बात ना बनी ना, आपकी कोई बात समझ में ना आए तो आप उसको कहना शुरू कर दें कि जी ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो भाई तोड़ मरोड़ का क्या डेफिनेशन है? तो आपकी समझ में नहीं आ रही बात, वो तोड़ मरोड़ बन जाती है, तो ये तो नहीं उलमाए बातिल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। यानी बेसिकली यही है कि दुनियावी मफाद की खातिर उसको चेंज करते हैं, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देते हैं। खैर, तो हिजाब और पर्दे के जो मुखालिफ कुवतें हैं उनमें सबसे मुश्किल और बड़ी कुवत जो होती है वो उलमाए बातिल की कुवत होती है। अगर बादशाह के जुल्म से बचने के लिए करें तो दुनियावी मफाद के अंदर जुल्म से बचना नहीं आता है, ठीक है। अपनी जान को बचाना जो है ना वो उसकी खातिर फिर ये करना होता है कि आप फतवा तो फिर भी नहीं दें लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आप वहां से भाग जाएं, फरार इख्तियार कर लें, ठीक है। फतवा देना फिर ऐसे मौके के ऊपर जो उलमाए हक होते हैं ना वो अपनी जान दे देते हैं, ठीक है, वो बातिल के हक में, या वो कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन वो यानी बादशाह की जुल्म से बचने के लिए उसके हक में फतवा नहीं देते, ठीक है। बहरहाल जान बचाने के लिए भाग जाना जो है ये इसकी इजाजत है शरीयत के अंदर, लेकिन उस यानी फतवा दे दिया ना तो फिर तो पूरा का पूरा दीन ही फिर मस्क हो जाता है। इसलिए कि अवाम जो है वो उलमा को टिपिकली स्पीकिंग अवाम उलमा को फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरे जो मुखालिफ कुव्वत होती है जो कि बहुत मुश्किल होता है डील करना जिसके साथ, वो शौहर अगर पर्दा करना चाहे, ठीक है, यानी अपनी नजर की हिफाजत करना चाहे और गैर मखलूत जो मखलूत महाफिल हैं उनसे बचना चाहे खानदानी पार्टीज के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर, लेकिन बीवी उसके पर्दे करने के खिलाफ हो जाए, ठीक है, बीवी मुखालिफ हो कि नहीं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी पर्दा, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे ये चीज जो है वो अच्छी नहीं लगती कि तुम जो है वो मेरी बहनों से बात ना करो, तुम मेरी कजन से बात ना करो, तुम जो है वो यानी घर के अंदर जब कोई पार्टी होगी फैमिली गैदरिंग होगी तो उसके अंदर मर्द अलग और मर्द और औरतें अलग बैठे, मुझे ये बातें पसंद नहीं है, मैं इन चीजों को गलत समझती हूँ। अब ये बहुत मुश्किल कुव्वत होती है जिसका शौहर को मुकाबला करना होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बीवी पर्दा करना चाहे और शौहर उसके पर्दे की मुखालफत करे तो बीवी के लिए पर्दा करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और ये दोनों काम इसलिए इतने मुश्किल होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी का लिबास बनाया है और बीवी को शौहर का लिबास बनाया है। मतलब ये होता है इसका कि ये दोनों एक दूसरे से इतना करीब होते हैं कि जितना कोई दूसरा इंसान किसी से करीब नहीं होता सिवाय अल्लाह वालों के, क्योंकि अल्लाह वाले जो बंदों का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, तो उनका ताल्लुक जो होता है ना इंसानों के साथ, वो बीवी शौहर के ताल्लुक से भी ज्यादा करीब होता है, इसलिए कि वो अल्लाह के ताल्लुक में इनों को मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन अदरवाइज इंसानों में कोई किसी के इतना करीब नहीं होता और इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजारता जितना कि शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तो इस वजह से अगर इनमें से एक दूसरे की मुखालफत करना शुरू हो जाए तो इस मुखालफत को फिर डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, और पर्दे की मुखालफत बहुत सारे शौहर और बीवियों के पर्दे की मुखालफत करते हैं, वो नहीं चाहते कि जी उनकी बीवियां उनके भाई से पर्दा करें या उनके घर के दूसरे अफराद से पर्दा करें जो कि बीवी के गैर महरम है। हत्ता के कुछ तो शौहर ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बीवियों को अपने दोस्तों के साथ जो है वो बाकायदा प्रमोट यानी इनकरेज करते हैं या उनको फोर्स करते हैं कि तुम मेरे दोस्तों के साथ जो है वो बातचीत किया करो और उनके साथ जो है हंसी मजाक किया करो। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी उनको अगर अपनी बीवी की खूबसूरती के ऊपर होता है ना नाज कि जी मैंने देखो कितनी खूबसूरत बीवी मुझे मिली है, इसका मतलब ये है कि मैं खुद कितना खूबसूरत हूँ कि मैं इतना खूबसूरत या इतना हैंडसम था इतना स्मार्ट था कि देखो इतनी खूबसूरत औरत जो है ना वो मेरे निकाह में आ गई। ठीक है, तो अपने इस फखर को ना वो अपने दोस्तों के सामने दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो अपनी बीवी को दोस्तों के सामने बेपर्दा करते हैं, या ये कि जी अगर उनकी बीवी जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है बहुत ही ज्यादा उसने अचीवमेंट्स करी हुई है दुनियावी तौर पर, तो फिर वो इस अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट के तौर पर अपने दोस्तों के सामने रखना चाहते हैं, दोस्तों से जो है वो यानी दाद लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इस वजह से भी, या और भी रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से अपनी बीवी के पर्दे के खिलाफ होते हैं ऐसे मर्द। और बीवियां जो पर्दे के खिलाफ होती हैं अपने शौहर के, तो फिर वो समझती हैं कि जी हमारा खानदान टूट जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस वजह से शौहर के पर्दे के खिलाफ होती हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो एक बड़ी कुव्वत होती है, बहुत ये भी बहुत मुश्किल कुव्वत होती है जिसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है, ये अपने वालिदैन होते हैं। अपने वालिदैन बेटे को पर्दा नहीं करने देते, बेटी को पर्दा नहीं करने देते, और वालिदैन का क्या मुकाम क्या होता है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम उनके ऊपर ना सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं बल्कि हम उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, हम उनको यानी उनको अपना गाइड के तौर पर देखना चाहते हैं या देख रहे होते हैं। तो वो अगर शरीयत के रास्ते में रुकावट बन जाए तो ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है इंसान के लिए। और इसी तरीके से जो ससुराली वालिदैन होते हैं, ससुर और सास, चाहे यानी लड़के के हों या लड़की के हों, तो ये अक्सर जो है पर्दे के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं कि जी ये कौन, ये कहाँ से आ गई, ये बुरके वाली कहाँ से आ गई हमारे खानदान के अंदर, बहुत दीनदार बनती है, या हम तो इसको जो है वो इसका फैशन देख करके लेकर के आए थे, अभी हमारे खानदान में आने के बाद जो है वो ये नेक ये क्या बन गई है कि उसने बुरका ओढ़ना शुरू कर दिया, अब ये पर्दा करना चाहती है, तो इस वजह से हमारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी, ये जो है वो हमें जलील और रुस्वा कर देगी, हमारे खानदानी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे इसके पर्दे की वजह से। तो इस वजह से सास और ससुर जो है वो बहू के पर्दे के रास्ते में रुकावट बनते हैं। उसी तरीके से बेटे के पर्दे के रास्ते में माँ बाप रुकावट बनते हैं, या बेटी जब उसकी शादी नहीं होती है तो उस वक्त जो है वो बाप ऐसे भी हैं कि जिनको जो अपनी बेटियों को कहते हैं कि अगर तुमने इस बुरके को ना उतारा तो मैं तुम्हें आइंदा अपने साथ बाहर लेके नहीं जाऊंगा। वो अपनी रुसवाई महसूस करते हैं इसके अंदर कि उनकी बेटी पर्दा कर रही है, क्योंकि उनका जो उठना बैठना होता है वो बेदीन और बददीन किस्म के लोगों में होता है, तो वो अपनी बेटियों से पर्दे को बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वजह से, तो वालदेन की रुकावट होती है। फिर उसके बाद जब कभी किसी मर्द को यानी मर्द को भी जॉब करनी होती है, ऑफ कोर्स कभी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पर्दे के मुखालिफ होते हैं कि जी ये मखलूत महफिलों के खिलाफ क्यों है, ये क्यों नहीं जाता, इसको चाहिए कि ये सेल्स टीम के अंदर है, तो सेल्स टीम में होने की वजह से इसको जो है औरतों के साथ बड़े अच्छे से मिलना चाहिए, दोस्तियां बनानी चाहिए, ठीक है, फीमेल कस्टमर्स के साथ, फीमेल क्लाइंट्स के साथ, और जो हमारी जो 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 पार्ट जो गैदरिंग्स होती हैं यानी जो कॉरपोरेशन की गैदरिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है ये अलग थलग क्यों रहते हैं, इसको मिलना जुलना चाहिए लोगों के साथ। उसी तरीके से अगर किसी औरत को मजबूरन, ठीक है, शरीयत के अंदर मजबूरी के तहत इजाजत होती है जॉब करने की, तो अगर मजबूरन जॉब करनी पड़ रही है, उसका कोई और यानी ऐसा नहीं है जो कि उसके नानो नफा के जिम्मेदारी उठा सके, तो उसको जॉब करने की इजाजत होती है, लेकिन उसकी जॉब के ऊपर जो उसका एम्प्लॉयर है, जो जिसने उसको तनख्वाह देनी है, अब वो उसके पर्दे के खिलाफ है, वो उसको पर्दा नहीं करने देना चाह रहा, तो अब इस औरत के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है कि अब ये कैसे जॉब को छोड़े, दूसरी जॉब मिलना मुश्किल लग रहा होता है, और बीवी बच्चों को पालना होता है और जरूरियात को पूरा करना होता है, तो एम्प्लॉयर की जो जो मुखालफत होती है वो भी एक मुश्किल मुखालफत होती है। इसी तरीके से दीगर रिश्तेदार होते हैं, कजन्स होते हैं, जिनके साथ लोग जो होते हैं वो पले बड़े होते हैं, तो उनके साथ बड़ी अच्छी एक फ्रैंकनेस होती है। अब जब बालिग हो जाते हैं तो शरीयत कहती है जी इनसे भी पर्दा करो, ये भी तुम्हारे नामहरम है। तो कजन से पर्दा करना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अक्सर लोग जो है वो नहीं चाहते, वो दूसरों से पर्दा कर लेंगे, बाहर वालों से पर्दा कर लेंगे, लेकिन कजन से नहीं पर्दा करते। और कजन से पर्दे के मामले में वालदैन और भी ज्यादा मुखालफत करते हैं कि जी ये तो मेरी अपनी बहन का बेटा है, तुम इससे अगर पर्दा करोगी तो फिर मेरी और मेरे बहन के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो माँ मुखालफत करती है खालाजाद और मामूजाद बहन भाई से पर्दा करने से। उसके अलावा और दीगर रिश्तेदार होते हैं, खालू, ये भी नामहरम होते हैं, तो खालू के साथ पर्दा करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए कि खाला जो होती है वो बहुत करीब होती है, खाला जो है वो माँ की तरह होती है, तो उसके शौहर से पर्दा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो दीगर रिश्तेदार जो है वो रुकावट बनते हैं। फिर दोस्त अहबाब रुकावट बनते हैं, जिनके साथ जो है वो बेदीनी के जिंदगी के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और अनफॉर्चुनेटली इसकी बात ये समझ में ही नहीं आ रही कि दीनदार होने के बाद अपनी दोस्तियां भी चेंज करनी पड़ती हैं। दीनदार होने के बाद दोस्तियां भी चेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप बेदीन लोगों को ही दोस्त बना के रखेंगे और उन्हीं के साथ अपनी अप्रूवल रेटिंग्स को चेक करते रहेंगे कि जी मैं कितना अप्रूवेबल हूं उनके नजदीक, तो फिर ये दोस्त आपके दीन के रास्ते में रुकावट बनेंगे या आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस वजह से जो दोस्त अहबाब होते हैं वो पर्दे के रास्ते में बहुत रुकावट बनते हैं। फिर उसके बाद आज के दौर में खुसूसन माहौल और मुआशरा हर चीज ही बेपर्दगी की तरफ दावत देती है, घर के अंदर और घर के बाहर तो वैसे ही हर चीज ही बेपर्दा है, बुरियानियत है, फहाशी है। किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी यानी इस्लामी मुल्क हो, गैर इस्लामी मुल्क हो, मुसलमान मुल्क हो, गैर मुस्लिम मुल्क हो, हर जगह के वहां पर जो है वो इसके यानी हर पूरा माहौल जो है वो पर्दे के खिलाफ है। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो कि बहुत अहम है, इनको इनको रियलाइज करना, इस वजह से उनको भी पढ़ते हैं। जरा आपके कुछ कमेंट्स या सवाल देख लेते हैं कि बादशाह का जुम्मे तो हो गया ना, किसी ने प्राइवेट मैसेज, दैट मींस वुमेन कैन नॉट वर्क इफ दे डोंट हैव अ मजबूरी। जी, इफ दे डोंट हैव अ मजबूरी तो फिर आगे पर्दे के अहकाम आए हैं कि हिजाब बिल अशखास और हिजाब बिल बुरका। ठीक है, ये हिजाब है जो कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए रखा है। हजरत दयूस किसको कहते हैं? दयूस जो होता है वो बेगैरत मर्द को कहते हैं कि जो कि जिस अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो गैरत की सिफत रखी है तो उस सिफत के को छोड़ करके वो बेगैरती के ऊपर उतर आता है, यानी अपनी औरतों को बेपर्दा फिराता है और चाहता है कि उसकी औरतें गैर महरूमों के साथ इख्तलात करें, तो उसको दयूस कहते हैं। और दयूसियत जो है ये गुनाह कबीरा में से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्दा करती हूँ, लेकिन बाज औकात कहीं हम मदऊ होते हैं या मिलने जाते हैं तो वहां मुझे मुश्किल होती है, हालांकि वो लोग जानते भी हैं पर आ जाते हैं, तो क्या हम वहां जाना छोड़ दें? जैसे कि कल या परसों बात हुई थी, कल ही बात हुई थी बल्कि, कि जब ऐसी जगह पे हमारा जाना हो जहां पर कि हमें एहतमाल है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पर्दे के बारे में लूज हैं, वो एहतियात नहीं करते, तो फिर अपने पर्दे का खुद ख्याल रखना होता है कि अपने साथ हर वक्त निकाब को रखें और इमीडिएटली जो है वो जैसे अगर कोई ऐसा मामला हो तो अपने आप को कवर कर लें। ठीक है, और अनकवर्ड होके वहां बैठे ही नहीं, बुरका उतारे ही नहीं ऐसी जगहों पे, तो जाना छोड़ देना वो तो एक एक्सट्रीम मेजर है, जो कि अगर कोई और रास्ता ना बन रहा हो और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए तो जाना छोड़ना भी पड़ता है ऐसी जगहों के ऊपर। ठीक है, जैसे अभी बात हुई ना कि दोस्त साहब आपको चेंज भी करना पड़ता है और अपने ताल्लुकात को जरा कम करना पड़ता है अल्लाह की खातिर, आखिरत की खातिर, लेकिन अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आई है तो कम से कम अपना बुरका या अपना जो हिजाब वगैरह है वो ऐसे संभाल करके रखें कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो फौरन से उसको आप पहन लें। जैसे कि बात हुई थी कि पर्दा हमने खुद करना होता है, हम दूसरों को पर्दा नहीं करा सकते। ठीक है, दूसरों को हम कुछ भी नहीं करा सकते, लेकिन पर्दा तो जैसे कि अभी हमने बहुत सारी मुश्किलात सुनी है ना, तो पर्दा तो खुद करना इतना मुश्किल काम है, दूसरों को कैसे कराएंगे? तो इस वजह से अपने पर्दे का खुद हिसाब, खुद ख्याल करना पड़ता है, और औरतों को भी करना पड़ता है, औरतों को भी करना पड़ता है, और मर्दों को भी अपनी निगाहों की खुद हिफाजत करनी होती है। और औरतों को नहीं कह सकते कि जी क्या करें जी, ये तो बेहिजाब फिरती हैं तो अब मैं अपनी निगाहों की कैसे हिफाजत करूं। नहीं जी, आप खुद हिफाजत करें, आप खुद जो है वो इनसे बातचीत को बंद करें या कम करें, जरूरत के तहत रखें। तो ये तो 8 बातें हो गई ना, अच्छा नहीं, 6, ये 7 बातें होगी। माहौल मुआशरा जो था वो 7वां पॉइंट था। फिर 8वां पॉइंट है कि अपना 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 जाती बदन जो है वो भी एक रुकावट बनता है, उसकी वजह से भी मुश्किल होती है। अपना मिजाज फॉर एग्जाम्पल और बदन, ठीक है, वो कैसे कि जब जो है वो मौसम बड़ा अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो उसमें तो बुरका पहनना जी चले तो उसका काम नहीं होता, लेकिन जब गर्मी ज्यादा आ जाती है तो अपना बदन फिर उसको मुश्किल होती है ना, कि गर्मी के मौसम के अंदर और किसी ऐसी तंग जगह के ऊपर आप जा रहे हैं जहां पर के चलने की जगह नहीं है और घुटन घुटन है वहां पर, तो ऐसे के अंदर पर्दा करना एक मुश्किल काम होता है औरतों के लिए, गर्मी में बुरका पहनना, तो अपना बदन भी रुकावट बन जाता है। कुछ खवातीन होती हैं उनका मिजाज भी ऐसा होता है कि जी वो जरा ठंडे यानी जगह पे रहना, उनको उनको आदत होती है उस जगह की, तो गर्मी की जगह पे कभी चली जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए पर्दा करना। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट कि अपना जो दिल होता है ना वो भी बड़ा अक्सर कमजोर होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी तकवियत नहीं होती कि अल्लाह की खातिर जो है वो दूसरों की नाराजगी बर्दाश्त कर ले, हत्ता कि दूसरों की मुखालफत बर्दाश्त कर ले। तो अपना कमजोर दिल जो है वो रास्ते में रुकावट बन जाता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी गैर इस्लामी मुल्क में जा रहे हैं आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में, खुसूसन जब वहां पर जो है वो ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ खुसूसन पिछले सालों के अंदर कि जी ये मुसलमान मर्द और औरतें जो होती हैं खुसूसन ये लोग जो है वो दहशतगर्द होते हैं और ये तो बड़े बुरे होते हैं, तो अब ऐसी जगह पे जाकर के पर्दा करना और सही तरीके से पर्दा करना, तो उस ऐसी जगहों पे जाकर के ना अच्छे अच्छे जो मुसलमान मुल्कों के अंदर पर्दा कर भी रही होती हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाकर के या तो पर्दा खत्म कर देती हैं या अपने पर्दे को जो है वो रिलैक्स कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह क्या बनती है, अपना दिल इतना कमजोर होता है, उसके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती है कि वो इन परसीव्ड मोहब्बतों इन परसीव्ड मुखालफतों का मुकाबला कर सके। यानी वो कोई बंदा आकर के आपको पीट नहीं रहा होता नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो कोई आपको आंखें दिखा रहे होते हैं या आपको जो है वो जरा जरा देखना शुरू कर देते हैं, या ये कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस अंदर ही अंदर एक खौफ होता है कि जी ये मुझे देख रहे होंगे, ये मुझे जो है वो अजीब व गरीब सोच रहे होंगे, तो इस वजह से अपना पर्दा खत्म कर देती हैं, ठीक है, अमेरिका जाकर के, यूरोप जाकर के, किसी और जगह जाकर के। गवर्नमेंट की अगर फोर्स और मजबूरी हो जाए तो वो तो जान बचाने की सिचुएशन के अंदर या जो है वो बड़े फसाद को अवॉइड करने के लिए अगर किसी को कुछ रिलैक्स करना पड़ जाए तो वो तो दूसरे की जिम्मेदारी बन गई ना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनी। लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि खुद ही एक अनजाने खौफ की वजह से पर्दा खत्म कर दिया, ठीक है, ये 9वां पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ तो मुश्किल नहीं होती मगर पाकिस्तान में जी, जब मुश्किल में ही तो फिर अल्लाह ताला को पसंद आता है ना, वो बंदा जो मुश्किल से सूरत हाल में उसकी खातिर फिर उसके अहकाम पे अमल करता है। शादी होती है फैमिली में तो पर्दा के जा सकते हैं क्या, पर्दा के अगर नहीं जाए तो ताल्लुकात खराब होने का मसला है जी। उसके अंदर ना बहुत सारी तफसील मशवरे के साथ आपको बताई जा सकती है कि जब इस किस्म की शादियों में जाएं तो कैसे पर्दे का अपना ख्याल रखें, ठीक है, तो वो मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए। हमारे दिल में फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपने ताल्लुकात को अल्लाह से खराब नहीं करना, अल्लाह के रसूल से खराब नहीं करना, और दूसरे नंबर के ऊपर फिर ये खानदानी रिश्तेदार ये सब आने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एकदम से जो है वो सब कुछ बंद कर दें, सबके साथ मिलना जुलना छोड़ दें, हम तो दरमियानी रास्ता बता रहे हैं कि अपने दिल के अंदर नंबर वन प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल को दें, ठीक है, लेकिन लोगों के साथ मिलने जुलने के अंदर आप अपने बड़ों से मशवरा करें, जो आपसे पहले पर्दा कर चुकी हैं खवातीन जो करती हैं इस किस्म की गैदरिंग्स के अंदर पर्दा, तो उनसे मशवरा कर लें, उनके भी तो अल्लाह का शुक्र है कि खानदानी ताल्लुकात चल रहे हैं ना, कोई सारी दुनिया ने उनको जो है वो अलग थलग तो नहीं कर दिया, अलग थलग देखें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वो बिल्कुल कट गई हैं अपनी खानदानों से, ठीक है, लेकिन वो लोग होती हैं जो कि अपने मिजाज से सारे फैसले करती हैं, बस किताबें पढ़ी उनके उनको पढ़ करके जो है वो अमल करना शुरू कर दिया, तो वो ना इस किस्म की एक्सट्रीम स्टेप्स ले जाती हैं, लेकिन जो बुजुर्गों से मशवरे के साथ चलती हैं ना तो उनका पर्दा भी चलता रहता है और उनका यानी ताल्लुकात भी नहीं टूटते, तो हमें चाहिए कि हम मशवरा कर लिया करें ऐसे मामले के अंदर। नहीं, दाढ़ी रखना फॉर मेन जो है ना ये बहुत ज्यादा डिफरेंट मामला है। एक तो बात ये थी शुरू में बात करी ना कि अल्लाह ताला ने मर्दों को उनके फिजिक्स भी स्ट्रॉन्गर बनाए और उनके आसाब भी स्ट्रॉन्गर बनाए। इमोशंस जो है वो मर्दों के अंदर कम रखे हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को जरा सा पहचान लेना, वरना मर्द भी तो औरत की तरह अगर बन जाए तो फिर उसका क्या किया जाए, ठीक है। चूड़ियां पहने अगर मर्द तो फिर उसका क्या किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने तो उसको चूड़ियां पहनने का हुक्म नहीं दिया ना, अल्लाह ताला ने तो उसको मर्द बनाया, अल्लाह ताला ने उसको आसाब दिए, ठीक है। तो उसको चाहिए कि अपने आसाब को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मर्दों के साथ दाढ़ी रखने का मामला पहली बात तो ऐसा है नहीं, दूसरी बात यह कि मर्दों की इसकी दाढ़ी में जो मुखालफत होती भी थी ना, आज के दौर में तो पिछले 4-5 साल हो गए हैं कि ये मुखालफत भी खत्म हो गई है। इसलिए कि ये जो शरी दाढ़ी होती है, छोड़े हुए बाल वाली दाढ़ी जिसको कहते हैं, ये दाढ़ी जो है अब फैशन में आ चुकी है, ठीक है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे मुल्कों में नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में ये फैशन में आ चुकी है। तो अब तो दाढ़ी रखना जो है वो तो यानी फैशन का हिस्सा बन चुका है। तो अब तो कोई यानी अब तो काफिर भी दाढ़ी रखते हैं, शरी वाली दाढ़ी, सिखों वाली और यहूदियों वाली दाढ़ी नहीं, मुसलमानों वाली दाढ़ी अब काफिर भी रखते हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। तो मर्दों का दाढ़ी वाला मामला बहुत मुख्तलिफ है इसके अंदर। ज्वाइंट फैमिली में पर्दा कैसे किया जाए जबकि वहां पर्दे की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती? आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बनाना होता है, खुद जो है वो करना शुरू करना होता है, और इसमें जो माहौल होता है ना, नेकों का माहौल अपनाना, सबसे ज्यादा मदद जो होती है वो इससे मिलती है। अकेले रह करके खाली यानी कोई भी काम जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सबको साथ लेकर के यानी अपने साथ जो है वो एक एक पीछे बैकिंग हो, अपने कोई मशायख होने चाहिए, उलमा होने चाहिए, ऐसे नेक सोहबत होनी चाहिए कि जिसके साथ मिलकर के कोई नेकी का काम शुरू करें ना, तो फिर आसान हो जाता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी। लेकिन आजकल तो बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि जिनके फैमिलीज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पर्दे का, लेकिन एक बच्ची ने शुरू किया पर्दा करना, एक लड़की ने शुरू किया, एक औरत ने शुरू किया और उसने इस्तेकामत दिखाई और अल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमाई। कुछ साल उसको तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली पर अल्लाह ताला ने खानदान के दूसरे लोगों को भी या तो नरम कर दिया या ये वो खुद भी पर्दा करना शुरू हो गए। तो किसी को यानी स्टेप लेना पड़ता है और उसको फिर अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल जाती है। आखिरत की खातिर इस किस्म की रुकावटें बर्दाश्त कर ले इंसान, तो उसको वो मुकामात मिल जाते हैं जो कि आम इबादत, नमाज, रोजे, हज, ज़कात से नहीं मिलते। अगर हस्बैंड ही मना करे तो उनको कैसे कन्विंस करें? जी ये तो बातें फिर बहुत तफसील हो जाएंगी, तो इस वजह से अभी हम इस पॉइंट को मुकम्मल कर लेते हैं कि नवा हो गया अपना खुद का कमजोर दिल होता है, फिर दसवां जो होता है ना वो अपना नफ्स, अपना जाती नफ्स, कि हमारा अपना नफ्स इतना यानी मजबूत होता है, ताकतवर होता है, और नफ्स को गुनाहों की चाट लगी हुई होती है। तो अगर गुनाहों की चाट लगी हुई जो चीज हमारे अंदर मौजूद है, हमारा अपना अंदरूनी दुश्मन, वो अगर बहुत मजबूत हो ना तो वो खुद ही जो है वो पर्दे के रास्ते में रुकावट बन जाता है। हम खुद ही जो है वो नहीं चाहते कि जी हम हर एक से पर्दा करें, शरी पर्दा नहीं करना चाहते, कुछ जगहों पर कर लेते हैं। हत्ता कि ये ऐसा भी मामला आया हुआ है आज के दौर में कि जो बाहर पर्दा करके निकलती है ना, तो वो इसलिए पर्दा करती हैं ताकि वो जिधर भी जाना चाहें जा सकें और कोई उनका जानने वाला मर्द उनको देख ना ले, अगर देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी, तो इस वजह से बुरका पहन के निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसी औरतें जो होती हैं वो उनको तो फिर जहां पे ऐसा कोई खदशा नहीं हो मर्दों के देखने का अपने खानदान के लोग, तो फिर वो वहां पर हरगिज़ पर्दा नहीं करती। तो ये पर्दा जो है ये पर्दा बज़ाहिर तो दीन को फॉलो कर रही है लेकिन हकीकत में ये नफ्स परस्ती ही है, ठीक है। तो अपना नफ्स कि भाई हम बाहर तो जाएंगे पर्दा करके, हमने अपने कजन से पर्दा नहीं करना इसलिए कि कजन के साथ तो जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, और अपने घर के अंदर यानी कोई और उनकी रुकावट नहीं बन रहा, कोई और उनको नहीं कह रहा बेपर्दगी के लिए, लेकिन खुद ही नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो ये अपना नफ्स ये भी मुखालिफ ही होता है, ठीक है। तो जहां हमने बैरूनी मुखालफतों का इतना ज्यादा तस्करा किया है ना, वहीं पर अंदरूनी मुखालफत कभी को भी याद रखना है कि अंदर भी हमारे एक मुखालिफ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी चीज जो जो साजिश के जहन में आई और पॉइंट पॉइंट्स में लिखा था वो ये था कि घरेलू मजबूरियां, ठीक है, जरूरतें, ये भी पर्दे के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, अगरचे कि ये इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी की दूसरी चीज होती हैं, ठीक है। ये क्या इसके क्या मतलब है? यानी जो अपने खादिम होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनसे पर्दा करना, ठीक है, क्योंकि खुदाम की जरूरत होती है और ये जो जरूरत है ना खुदाम की, खादमों की, सर्वेंट्स की, ठीक है, इसको शरीयत ने रिकग्नाइज किया है। यानी शरीयत ये नहीं कहती कि जी तुम्हें कोई खादमों की जरूरत नहीं है, तुम्हें खादम नहीं रखने चाहिए, बल्कि शरीयत इसको रिकग्नाइज करती है, हाँ खुदाम की जरूरत है और तुम्हारे पास खादम होने चाहिए। हत्ता कि इवन कुरान की आयत के अंदर इन खुदाम का जिक्र है, ठीक है। लेकिन ये खुदाम जो है अगर गैर महरम मर्द है, ठीक है, तो इनके साथ पर्दा करना ये अपनी जरूरियात के रास्ते में रुकावट बनता है। मिसाल के तौर पर जी हाउस बॉय, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान वगैरह के बाहर, पाकिस्तान में तो चलो, इंडिया में तो चलो मासियां आती होंगी, ठीक है, मासियां जो है वो औरत होती हैं, ठीक है, उनके साथ पर्दा नहीं होता, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में मासियों वाला सिस्टम तो नहीं होता ना, हर कोई तो मेड को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर जो ये कम सैलरी वाले जो लोग होते हैं, फिर ये ना हाउस बॉयज की तरह से काम करते हैं। अब हाउस बॉय से पर्दा करना, ठीक है, अगर हाउस बॉय को नहीं रखें तो घर के सारे काम खुद करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा एक मुश्किल क्रिएट होगी, ठीक है, हरज होगा बहुत ज्यादा दूसरे कामों के अंदर भी, तो हाउस बॉय को रखना लेकिन पर्दा उसके साथ करना, ये कैसे करें, ठीक है, तो अब इसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये आपके बड़े लोगों में से नहीं है बल्कि ये आपके तहत है, आपके खादिमों में से, आपका सैलरी पेशा है, राइट। उसी तरीके से चौकीदार से बहुत सारी खवातीन पर्दा नहीं करती, ठीक है, बाकी सारी दुनिया से करेंगी, जो चौकीदार है उसको पता नहीं अपना कोई यानी बाप समझा हुआ होता है उसको अपना, या अपना कोई बेटा समझा हुआ होता है, उससे पर्दा नहीं करती, हालांकि वो भी नामहरम होता है, घर में माली आता है गार्डनिंग करने के लिए, माली से पर्दा नहीं करती, ठीक है, और अपना जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर जो है वो चलो बहरहाल वो गैराज और गैराज से बाहर रह सकता है, उससे पर्दा करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नफ्स के शिकार लोग होते हैं तो फिर वो ड्राइवर से भी पर्दा नहीं करते, बाकी लोगों से भी कर लेते हैं, ड्राइवर से नहीं करते, ठीक है, तो ये घरेलू जरूरतें जो हैं ये भी पर्दे के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। तो देखें, अगर हम इन चीजों को जरा गौर से सोचें तो वाकई पर्दा एक मुश्किल काम है, इतनी सारी मुखालिफ कुव्वतें, अब पर्दे के हक में कुव्वतें कौन कौन सी हैं, जरा बताएं आप लोग, पर्दे के हक में कौन सी कुव्वतें, ये तो सारी मुखालिफ कुव्वतें थी ना, हक में जरा आप बताएं, ज्वाइंट फैमिली में पर्दे के क्या हुक्म है, चेहरा का और बात करने का क्या हुक्म है, ज्वाइंट फैमिली में अगर रह रहे हो तो इख्तलात जो है वो बस बहुत जरूरत के तहत जो है वो इख्तलात की इजाजत होती है, इख्तलात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है वो बिल्कुल यानी सेग्रीगेटेड रहना चाहिए, और चेहरा का पर्दा अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी कर सके ना तो लंबी चादर से और अपने को इस तरह से रखना चाहिए कि यानी कोई आमना सामना ना हो, ठीक है, तो उसमें उलमा जो है वो फरमाते हैं कि जी आई टू आई कांटेक्ट को खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल इमीडिएटली आई टू आई कांटेक्ट तो फर्स्ट चीज है, ठीक है, अगर बात करने की जरूरत भी पड़ रही है तो नजरें इधर उधर करके, झुका करके या इधर उधर करके बात करें, ठीक है, हैंड टू हैंड कोई चीज देना लेना खत्म कर दें, ठीक है, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फिर एक आप यानी मैसेजेस आगे प्रोवाइड कर दें कि अगले बंदे को पता लग जाए कि जी अब यहाँ ना यहाँ ये वैसा वाला मामला नहीं है जैसे पहले मामला था, अब जो है ना वो ये तैयार नहीं है इस तरह से इंटरेक्शन करने की, तो खुद बंदा जो है ना वो यानी अनईजी फील करना शुरू कर देता है, और ऐसे ही होना चाहिए, अनईजी फील करते करते बिल्कुल ये पर्दा शुरू हो जाना चाहिए जी। इसके जो हक में कुवतें हैं, ठीक है, इस दुनिया के एतबार से, बिकॉज हमने जो मुखालिफ कुवतें भी हैं वो तो दुनिया की कुवतें रखी सारी रखी ना, तो उसी तरीके से जो इसके हक में कुवत है ना वो सिर्फ एक कुवत है, और वो है उलमाए हक की कुवत, सिर्फ एक चीज है, एक ही बॉडी ऑफ पीपल है जो कि इसके हक में होता है, और वो उलमाए हक की कुवत होती है, उलमाए हक जो है वो बहुत सारे कामों के अंदर उनकी कमी बेशी हो सकती है क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, उनकी जिंदगी में भी 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है, उनके पास भी फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन वो पर्दे की मुखालफत नहीं कर सकते, नहीं करते कभी भी पर्दे की मुखालफत, ठीक है, अगर वो कर रहे हो ना पर्दे की मुखालफत तो फिर वो उलमाए हक कहलाने के काबिल ही नहीं रहते, तो उलमाए हक जो है सिर्फ ये होते हैं जो कि पर्दे के सपोर्ट में होते हैं, तो इस वजह से उलमाए हक के मौजू को समझने के लिए हमने आपको बाकायदा 3 बयान भी भेजे थे कि इनकी एहतराम को और इनके ऊपर एतमाद को हम अच्छी तरीके से समझ लें। पर्दा फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ हुक्म ऑफ अल्लाह, ये पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे, हाँ अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन हम यहाँ पर जो मुखालफतें और जो जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इस दुनिया के जो लोग हैं उनके लेवल पे बात कर रहे हैं ना, वरना अल्लाह तो है, जाहिर है अल्लाह ताला जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी कुव्वत है इसके हक की। इस्लामिक वीडियो बयान में नाम हरम पर नजर पड़ जाए तो क्या करें, इस्लामिक वीडियो बयान जो है वो सुनने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, ठीक है, मर्दों को भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मर्द जो है वो सुन रहे हैं तो चलो जी उसका उसके अंदर गुंजाइश है, मर्दों का तो देखने का मसला भी नहीं है, औरतों को वीडियो बयान देखने की क्या जरूरत है, आप उसको फोन का के जो रुख है वो दूसरी तरफ करके भी तो बयान सुन सकती हैं, ठीक है। और अगर नजर पड़ जाए तो, नजर पड़ जाए तो वो तो आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो भी किसी गैर महरम पे नजर पड़ सकती है, ठीक है। तो वो जो गैर दानिस्ता नजर होती है वो तो मर्दों को भी माफ होती है, अगर किसी औरत के ऊपर ना दानिस्ता तौर पर पहली नजर पड़ जाए तो वो पहली नजर तो मर्दों को भी माफ होती है, और औरतों का मामला तो और भी ज्यादा रिलैक्स है इस मामले के अंदर कि ना दानिस्ता तौर पर नजर पड़ जाए तो फिर वो तो मसला नहीं है ना, लेकिन उसके बाद फिर उसको मोड़ देना चाहिए, उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अक्सर ये ऑब्जेक्शन आता है कि ना महरम की आवाज भी ना सुनो, फिर सो सर्च फॉर सम फीमेल टीचर्स टू टेक क्लासेस व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मेल वॉइस। जी आगे हम ना ये तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जो गुनाह होते हैं तो गुनाहों के शरीयत ने ना असबाब करीबा और असबाब बईदा बाकायदा डिफाइन किए, ठीक है। तो जो असबाब करीबा हैं तो उनसे तो बचना लाजमी है, लेकिन जो असबाब बईदा होते हैं ना, यानी कि गैर महरम की आवाज सुनी, अच्छा औरतों की नहीं, आप तो मर्द यानी औरतों को कह रहे हैं कि जी मर्द गैर महरम की आवाज ना सुनो, ठीक है। तो माशाल्लाह ये असबाबे यानी बहुत बईदा में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन असबाबे बईदा को भी बंद करना शुरू कर देना तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी शरीयत ने असबाबे बईदा को बंद नहीं किया है, और उसकी वजह यही है कि इनसे एक तो बहुत ज्यादा हर्ज आता है, ठीक है। यानी ऑलरेडी जो है जो कि फर्ज पड़ता है वही करना मुश्किल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी कि नहीं जी मर्द की आवाज ही ना सुनो, मर्द से जो है वो पढ़ो ही ना, ठीक है। तो फिर जो है वो इतना असबाब बईदा हो जाता है कि फिर यानी दीन में भी हर जाता है, और जो है वो दुनिया के मामला भी नहीं चल सकते हैं, और इंसान जो है वो इल्म से भी महरूम हो जाता है। तो इस वजह से ना मर्द यानी शरीयत ने औरतों की आवाज को भी यानी औरतों की भी आवाज का पर्दा नहीं है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में मुब्तला है कि औरत की आवाज का पर्दा होता है, हालांकि औरत की आवाज का पर्दा नहीं होता, मर्द की आवाज तो वैसे ही नहीं पर्दा होता, औरत की आवाज का पर्दा नहीं होता। औरत की आवाज जो खास कर लुचदार आवाज कहलाती है, ठीक है, जिस जैसे कि गाना गाने के अंदर जो है ना जो मौसीकी के साथ जो है वो एक नरम आवाज निकाली जाती है, या इस स्टाइल में बात करना कि अगले बंदे का दिल मोह ले, तो वो वाली आवाज का तो पर्दा है 100%, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बातचीत, मसला फतवा पूछने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जो बातचीत औरत करती है, उस आवाज का पर्दा नहीं होता, ठीक है। तो अब जो है वो एक्सट्रीमिज्म तो फिर हर जगह आ जाता है ना, तो इसको एक्सट्रीमिज्म कहा गया है, और वरना तो फिर यानी जाहिर उलमा ने इसको एक्सट्रीमिज्म कहा है, लेकिन अवामुन नास तो फिर नॉर्मल पर्दे को भी एक्सट्रीमिज्म ही कहते हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि जी हम अवामुन नास से एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन लेते हैं कि हम उलमाए कराम से एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो मुखालफतें थी, और इसके हक में जो है वो सिर्फ उलमाए कराम है, और उलमाए कराम के साथ अगर हमारा रिश्ता मजबूत ना हो तो फिर पर्दा करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए कि मुखालफत इसकी बहुत ज्यादा है। इसी के तहत फिर एक और भी अहम पॉइंट है कि अच्छा मेरे ख्याल में ये फिर हम बाद में रखते हैं, अभी हम किताब के ऊपर आते हैं। वॉल्यूम नंबर 7 के अंदर जो अहकाम हिजाब हजरत ने लिखे हैं तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल, ठीक है। पेज नंबर 206, पेज नंबर 206 पे हम थे, अच्छा नहीं 205 में जो आखिर में बिल्कुल था वहीं से मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा। फरमाते हैं कि इंसदाद जराइम के लिए इस्लाम में सद्दे जराए का जरी उसूल और इसमें राह इतदाल, ठीक है। अब ये राह इतदाल वही आपके जो आखिरी सवाल आया था इस क्लास में मर्दों के आवाज के बारे में, तो वो राह इतदाल के तहत ही आता है। फरमाया कि जिस तरह उसूल अकायद तौहीद रिसालत आखिरत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शराय में मुश्तरक और मुत्तफ़िक़ुन अलैह चले आ रहे हैं, इसी तरह आम मआसी और फवाहिश और मुनकरात हर शरीयत और मजहब में हराम करार दिए गए हैं, ठीक है। यानी जो गुनाह है और मुनकरात है वो हर शरीयत में हराम है, लेकिन शराए साबिका में यानी जो पिछले अंबिया की शरीयतें थीं तो उनमें उनके असबाब और जराए को मुतलकन हराम नहीं किया गया था, ठीक है, जब तक कि उनके जरिए कोई जुर्म वाक़ ना हो जाए, ठीक है। अब ये इस जुमले की एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है, इस वजह से मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कयामत तक रहने वाली शरीयत थी, इसलिए इसकी हिफाजत का मिन जानिब अल्लाह खास एहतमाम यह किया गया कि जराइम और मासी, मासी गुनाह को कहते हैं, जराइम और मासी तो हराम थे ही, इन असबाब व जराए को भी हराम करार दे दिया गया जो आदत गालिबा के तौर पर इन जराइम तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, असबाब और ज़राए को भी, इस वजह से क्योंकि ये गालिबन आदत के तौर पर, यानी गलबा रखने वाली एक आदत के तौर पर ये जराइम तक पहुंचाती है। एक मिनट, यानी ये कहा जा सकता है कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, उसके लहजे का पर्दा है कि लुचदार ना हो। हाँ, अगर आप उसको लहजा कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जी लहजे का पर्दा है, यानी वो लहजा जब उसकी आवाज के साथ मिल जाता है तब उसकी आवाज जो है वो सतर बन जाती है, अदरवाइज उसकी आवाज सतर नहीं होती है। अच्छा, मसलन शराब नोशी को हराम किया गया, ठीक है। अब शराब नोशी जो है वो वैसे तो पिछली यानी शरीयतों में हराम नहीं, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, ठीक है। यानी शराब नोशी तो किसी भी शरीयत में मुतलकन गुना था ही नहीं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शरीयत के अंदर ये गुना नहीं था, लेकिन बाद में इसको गुना करा दिया गया कुरान की आयात के तहत, राइट। लेकिन यहाँ पर बतौर मिसाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन शराब नोशी को हराम किया गया, तो जब हराम कर दिया गया ना, उसके बाद शराब के बनाने, बेचने, खरीदने और किसी को देने को भी हराम करा दे दिया गया। यानी ये नहीं कि आप खुद नहीं पी रहे, बल्कि दूसरों को भी ना आप ना नहीं दे सकते, वो भी हराम है। सूद को हराम करना था, तो सूद से मिलते जुलते मामलात को भी नाजायज कर दिया गया। इसीलिए हजरात फुकहा ने तमाम मामलात फासिदा से हासिल होने वाले नफे को सूद की तरह मारे खबीज करार दिया, ठीक है। यानी इस तरह का तो मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम बनाओ ही नहीं कि जिसके अंदर सूद हो या और दूसरे नाजायज काम हो। तो दूसरे नाजायज काम जो है उनके लिए सराहतन अगर हुरमत नहीं भी आई, सूद के लिए तो आई है ना, तो सूद से मिलते जुलते बाकी चीजों को हराम करा दिया गया। अच्छा, इससे ज्यादा आसान मिसाल समझ लीजिए कि नेक्स्ट मिसाल है कि शिर्क बुतपरस्ती को कुरान ने जुल्म अजीम और नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया, तो उसके असबाब व जराए पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी। आफ्ताब के तुलू, गुरूब और वस्त में होने के औकात में, चूंकि मुशरिकीन आफ्ताब की परस्तिश करते थे, इन औकात में नमाज पढ़ी जाती तो आफ्ताब परस्तों के साथ एक तरह की मुशाबहत हो जाती, फिर ये मुशाबहत किसी वक्त खुद शिर्क में मुबतला होने का सबब बन सकती थी। इसलिए शरीयत ने इन औकात में नमाज और सजदे को भी हराम और नाजायज कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए सही हदीस मौजूद है कि इन मौकों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रहता है ना की हदीस है, अगरचे के कुछ दूसरे फुकहा के नजदीक इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन यहाँ पर भी बतौर मिसाल किसको लिया जाएगा कि देखो इस तरीके से जराए को शरीयत ने मना किया है। बुतों के मुजस्समात और तस्वीरें चूंकि बुत परस्ती का करीब जरिया थी, इसलिए बुत तराशी और तस्वीर साजी को हराम और उनके इस्तेमाल को नाजायज कर दिया गया, ठीक है। तो ये तस्वीर वगैरह के जो एक बड़ा एक इशू बना हुआ है ना आज के तो दौर के अंदर, तस्वीर हराम है कि नहीं है, तो इसकी एक बड़ी इल्लत जो थी ना वो ये है इसको हराम करा देने की, कि ये बुत परस्ती का जरिया बनती है, ठीक है। एकदम से नहीं बनती, जैसे आज के दौर के अंदर तस्वीरें एकदम से तो नहीं हम उसको पूजना शुरू कर देते, लेकिन ना बेपर्दगी का जरिया बनती है, ठीक है। और ये बाद में जाकर के इवेंचुअली जो है वो बुत परस्ती का भी जरिया बन सकती है, क्योंकि कोई बहुत ही नेक बुजुर्गों और उनका फिर इंतकाल हो जाए, फिर उनकी तस्वीरें जो हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, माजी में की जाती थी और अभी भी हो सकता है कि जा सकें। इसी तरह जबकि शरीयत ने जिना को हराम करार दिया, तो इसके तमाम असबाब तरीबा और जराए को भी मुहर्रमात में दाखिल कर दिया, और किसी अजनबी औरत या मर्द पर शहवत से नजर डालने को आंखों का जिना करार दिया, ठीक है। यानी आंखों का जिना नजर डालने को, इसका कलाम सुनने को कानों का जिना, उसके छूने को हाथों का जिना, ठीक है। तो कलाम सुनने से मुराद वही जो लुचदार लहजे के साथ जो कलाम है, तो उसको कानों का जिना, उसके छूने को हाथों का जिना, उसके लिए जद्दोजहद में चलने को पाओं के जिना, तो फरमाया जैसे कि हदीसें सही में वारिद है, इन्हीं जराइम से बचाने के लिए औरतों के वास्ते पर्दे के अहकाम नाजिल हुए हैं। तो ये पर्दे के जो तफसीली अहकाम आते हैं ना, ये इस असल जुर्म तक पहुंचने के जराए को बंद करने के लिए हैं। जैसे कि कल हमने हेडिंग पढ़ी थी इंसदादे फवाहिश, ठीक है, तो फोहश के रास्तों को बंद करने के लिए ये सारे अहकाम आते हैं। मगर असबाब और जराए, अब देखें, अब यहाँ पर इतदाल वाली बात शुरू हो रही है कि असबाब और जराए का करीब और बईद एक तवील सिलसिला है, यानी एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एक्सट्रीम उस एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं, इस एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं, तो एक करीब और बईद एक तवील सिलसिला है। अगर दूर तक इस सिलसिले को रोका जाए तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, ठीक है। बड़े मजे की बात यह है कि जी जिंदगी दुश्वार तो है, वो तो जब कोई शख्स नमाज पढ़ना शुरू करता है तो उसकी भी जिंदगी दुश्वार हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है वो माशाल्लाह सारा सारा दिन वो अपनी मर्जी से गुजारता था, अब जो है वो उसको उठना पड़ता है, फजर में तो उठना सबसे मुश्किल काम है, फिर जोहर में काम कर रहा होता है, वो उसको छोड़ना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है, ठीक है। असर में जो है वो काम कर रहा होता है, कोई काम निपटा रहा होता है, खत्म करके उसको घर जाना होता है, और इधर से जो है वो असर का हुक्म आ जाता है, तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये जिंदगी दुश्वार होना फिर तो असर और उनकी नमाज के लिए और फजर की नमाज के लिए भी है, ठीक है। तो फिर हाउ डू यू डिफाइन जिंदगी दुश्वार होना, तो कौन किसकी डेफिनेशन ली जाएगी जिंदगी दुश्वार होना, ठीक है। ये जो नया नया नमाज पढ़ने वाला शख्स है उससे पूछा जाएगा कि अगर आपकी जिंदगी दुश्वार हो गई है तो फिर जो है ना ये नमाज पढ़ना आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, आप जी जो आसान नमाजों को पढ़ लिया करें, जो मुश्किल नमाजों ना पढ़ा करें, ठीक है। या ये कि किसी ऐसे शख्स से इसकी डेफिनेशन को लिया जाएगा कि जी आप बताएं कि जी जिंदगी के दुश्वार होने की क्या डेफिनेशन है। उलमा भी तो यही कह रहे हैं जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, और वो शख्स भी यही कहता है कि जिसने अभी नमाज पढ़नी शुरू करी है कि जिंदगी दुश्वार हो गई, तो विच वन डू यू टेक, ठीक है। तो इस वजह से ना ये उलमा की जो बात करी जाती है बार बार, समझाया जा रहा है उलमा के ऊपर एतमाद, उलमा का एहतराम, वो इसीलिए है बिकॉज आप जो है वो अगर उलमा से पूछ कर नहीं चलेंगे, उलमा की बात नहीं मानेंगे ना, तो फिर तो एवरी पर्सन उसकी जिंदगी दुश्वार हो रही है, और पर्दा तो फिर वैसे ही इतना मुश्किल काम है, यहाँ तो फजर की नमाज पढ़ना सबसे दुश्वार काम होता है, राइट। तो उलमा, ठीक है, ये एक कलीदी, एक की पॉइंट है हमारी दीन के अंदर, कि उलमा के बगैर दीन नहीं चल सकता, नहीं होगा, यानी आपका दीन नहीं, अल्लाह का दीन तो चलेगा, ठीक है। अगर आप उलमा को निकाल देंगे अपनी जिंदगी से तो अल्लाह का दीन कोई खत्म नहीं हो जाएगा, अल्लाह का दीन तो चलता रहेगा, और दीन उस पर अमल करने वाले हमेशा से रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी से दीन खत्म हो जाएगा अगर आप उलमा के बारे में बदजन हो गए, बदगुमान हो गए, और आपने उनके ऊपर तनकीदें शुरू कर दी, और उनसे रास्ता काट लिया, अपना ताल्लुक तोड़ लिया अपना, तो आप गए, ठीक है, अल्लाह का दीन कहीं नहीं जाएगा, आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों में ना हमारे लिए बहुत बड़े बड़े असबाब होते हैं, बड़े मेजर फंडामेंटल असबाब होते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अमल में बड़ी तंगी पेश आएगी जो इस शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। कुरान करीम का इसके बारे में खुला हुआ ऐलान ये है कि मा जअल अलैकुम फिद दीन मिन हरज, के तुम यानी दीन में तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं डाली गई है, इसलिए असबाब व ज़राए के मामले में ये हकीमाना फैसला किया गया कि जो अफाल व अमाल किसी मासियत का ऐसा सबब तरीब हो कि आम आदत के एतबार से इसका इर्तिकाब करने वाला इस मासियत में जरूर मुब्तला हो ही जाता है, ऐसे असबाब तरीबा को शरीयत इस्लाम ने असल मासियत के साथ मुलहक करके उनको भी हराम कर दिया, ठीक है। जो असबाब तरीबा होते हैं उनको भी हराम कर दिया। अब ये हराम कर दिया, इस लफ्ज के ऊपर भी गौर करें कि किसने हराम कर दिया, अल्लाह ताला की आवाज आई ऊपर से, या नबी अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह रोज़ा मुबारक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आनी शुरू हो गई, इसको भी हराम कर दो, किसने हराम कर दिया, ये क्या कह रहे हैं, शरीयत मुहम्मदिया या शरीयत ने हराम कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज निकली थी रोज़ा मुबारक से, या अल्लाह ताला की आवाज आई थी आसमान से, अर्श से, किसने हराम कर दिया जी। उलमाए दीन ने, सिर्फ एक आलम ने नहीं, उलमाए दीन ने, ठीक है, इसको कहते हैं इजमाए उलमा, इजमाए उम्मत, ठीक है, या इजमाए सहाबा भी इसको कहते हैं, इसलिए कि सहाबा कराम ही दीन के सबसे पहले उलमा थे। उस जमाने में उलमा कौन थे, सहाबा कराम के दरमियान जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले सहाबा थे वो उनके दौर के उलमा थे, जिनमें हजरत आयशा सिद्दीका अनहा भी शामिल थी, और दूसरे यानी जो 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 यानी खुलफाए राशिदीन भी सारे शामिल थे, ठीक है। तो उलमाए दीन ने ये सारी चीजें जो है ना वो इसी को इजमाए उम्मत कहते हैं, और इजमाए उम्मत जो है वो शरीयत के माखज में से एक माखज है, ठीक है, किताबुल्लाह, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इजमाए उम्मत। तो इजमाए उम्मत को अगर हम निकाल देंगे ना तो फिर बहुत बड़ा दीन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फिर पर्दा वर्दा जो है ना उसकी बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये जितने असबाब की बात अभी हो रही है ये असबाब जो है वो सारे के सारे जायज करार देने पड़ेंगे, तो सब जायज है जी, जो चाहें आप करें, ठीक है। तो ये असबाब करीबा हो गए, और उसके बाद असबाब बईदा हैं कि इनके अमल में लाने से मासियत में मुब्तला होना आदतन लाजिम और जरूरी तो नहीं है, मगर कुछ ना कुछ दखल मासियत में जरूर है, ऐसे असबाब ज़राए को मकरूह करार दिया, यानी जिन असबाब का कुछ ना कुछ दखल है उनको हराम नहीं करार दिया, उनको मकरूह करार दिया, और जो असबाब इनसे भी ज्यादा अबअद हैं, यानी इनसे भी ज्यादा बईद हैं, इनसे भी ज्यादा दूर हैं कि मासियत में उनका दखल शाज़ो नादिर है, उनको नजरअंदाज करके मुबाहात में दाखिल कर दिया। मुबाहात का मतलब परमिसेबल चीजें, ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल आगे देते हैं कि पहले मसले की मिसाल शराब फरोशी की है कि ये शराब नोशी का सबबे करीब है, शराब बेचना ये शराब नोशी का सबबे करीब है। आप किसी को शराब बेचेंगे तो अब उसने उस शराब को जो है वो अपने शोकेस पे डिस्प्ले करने के लिए तो नहीं आपसे खरीदा ना, राइट। उसने तो पीने के लिए खरीदा है, हालांकि ऐसा मुमकिन है कि वो ना पिए, लेकिन इसका ज्यादा एहतमाल किस चीज का है कि जो खरीदता है वो पीने के लिए खरीदता है, ठीक है। अब जो इंसान की अकल इसमें इस्तेमाल हो रही है, देखें, ठीक है ना, एक अकलमंद इंसान की, एक सही और फितरत इंसान की, सलीमुल फितरत इंसान की अकल यही कहती है कि नहीं, अगर खरीद रहा है तो पिएगा, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए नहीं खरीदता कोई। इसको भी शरीयत ने इसी तरह हराम कर दिया जिस तरह शराब नोशी हराम है। किसी गैर औरत को शहवत के साथ हाथ लगाना अगरचे के आयन जिना नहीं है, मगर इसका सबब करीब है, शरीयत ने इसको भी इसी की तरह हराम करार दे दिया, ठीक है ना। शहवत के साथ हाथ लगाना, डॉक्टर साहब अगर इलाज के लिए हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, और वो सिर्फ इलाज की जगह पे हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो शहवत के तरह के साथ हाथ लगाने की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक एक शरी जरूरत है, इलाज मुआवजा करना, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ अगर हाथ लगाना है तो ये सबबे करीब है, इस वजह से इसको भी हराम करार दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे मसले की मिसाल यानी जो बईद वाले मसला मसला था, तो उसकी मिसाल क्या है कि किसी ऐसे शख्स के साथ अंगूर फरोख्त करना कि जिसके मुताल्लिक मालूम है कि वो इससे शराब ही बनाता है, ठीक है, लिक्विड की दुकान है उसकी, उसको आप अंगूर फरोख्त कर रहे हैं तो उसका तो पेशा ही यही है ना, या उसने सराहतन कह भी दिया है कि जी मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं इसे शराब बनाऊंगा। अब ये अगरचे शराब फरोशी के दर्जे में हराम तो नहीं होगा, क्योंकि आप शराब तो नहीं बेच रहे उसको, आप तो उसको अंगूर बेच रहे हैं, मगर ये मकरू और नाजायज करार दिया जाएगा, ठीक है, यानी हराम वाला वाला इसको शरी हुक्म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि नाजायज। नाजायज जब भी हराम और नाजायज, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। और आपने नोट किया हो, अगर कभी आपने गौर से सुना कि मुफ्ती हजरात जो हैं जब जवाब देते हैं ना, तो कभी वो लफ्ज हराम इस्तेमाल करते हैं और कभी वो लफ्ज नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे ही नहीं रैंडमली नहीं नाजायज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जानबूझ कर नाजायज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो मामला होता है वो हराम के दर्जे में नहीं आता, तो वो हराम उसको नहीं कह सकते, वो एहतियात करते हैं अपने अल्फाज के इस्तेमाल में, ठीक है, तो वो इस वजह से नाजायज कह रहे होते हैं, ठीक है। इसी को मकरूह तहरीमी भी कह सकते हैं, मकरूह तंजीही भी कह सकते हैं। तो मकरूह के दो दो लेवल्स होते हैं, वो भी जाहिर है कि कितना यानी कितना डिस्टेंस है गुनाह से, उसके हिसाब से मकरूह तहरीमी कोई चीज करार दी जाती है, और अगर वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए गुनाह से तो वो मकरूह तंजीही करार दिया जाता है, ठीक है, और आम जुबान के अंदर उसको नाजायज भी कहते हैं। यही हुक्म सिनेमा घर बनाने या सूदी बैंक चलाने के लिए जमीन मकान किराए पर देने का है कि मामले के वक्त जब ये मालूम हो कि ये इस मकान को नाजायज काम के लिए ले रहा है तो किराए पर देना मकरूह तहरीमी और नाजायज है। तो नाजायज का लफ्ज मकरूह तहरीमी के लिए एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कल हराम होता है, हराम जैसा मकरूह, ठीक है। तीसरे दर्जे की मिसाल ये है कि आम लोगों के हाथ अंगूर फरोख्त किए जाए जिनमें यह भी मुमकिन है कि कोई शख्स उनसे शराब कशीद कर ले, मगर ना उसने इसका इजहार किया, यानी उसने आपको बताया तो नहीं कि जी मैं शराब बनाने के लिए अंगूर खरीद रहा हूं, और ना हमारे इल्म में है कि जी हमें पता है कि ये बंदा तो शराब का कारोबार करता है, तो अगर से इसने हमें बताया नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये शराब बनाएगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ना यानी शरअन इस तरह की बै और शराह मुबाह मुबाह और जायज करार दी गई है, ठीक है। अब ये मसला क्लियर हुआ, असबाब बईदा क्या होते हैं, असबाब करीबा क्या होते हैं, और असबाब अबादिया क्या होते हैं। अबादिया वो जो कि बईद से भी ज्यादा दूर, ठीक है, जैसे कि मर्दों की आवाज सुनना जो है वो नाउज बिल्ला किसी को जिना की तरफ आमादा कर सकता है, तो कर तो हो सकता है किसी को, किसी का दिमाग इतना खराब हो, किसी का दिल इतना खराब हो, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा यानी मेंटल कोई पेशेंट हो तो उसको तो ये कर भी सकता है, लेकिन अगर उसको भी आप किसी यानी नाजायज करा दे देंगे तो फिर तो भाई यानी सभी काम रुक जाएंगे ना, फिर बहुत सारे काम रुक जाएंगे। बात समझ में आ गई जी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तंबीह जरूरी कि यहाँ ये बात याद रखना जरूरी है कि शरीयत शरीयत इस्लाम ने जिन कामों को गुनाह का सबब करीब सबब करीब दर्जा अव्वल का करार देकर हराम कर दिया, इस हुक्म हुरमत के बाद वो सब के लिए मुतलकन हराम हो गया, ठीक है, ख्वाह इब्तला गुनाह का सबब इब्तलाए गुनाह का सबब बने या ना बने, ठीक है, यानी अगर वो काम कर रहा है तो अब उसको करने से अगर गुनाह में मुब्तला होता है कि नहीं मुब्तला होता, इट डज नॉट मैटर, ठीक ठीक है, तो बगैर यानी कॉन्सिक्वेंस को देखे हुए, बगैर नतीजे को देखे हुए उसको हराम ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अब वो खुद एक हुक्म शरी बन गया जिसकी मुखालफत हराम हो गई। ठीक है, इस तमहीद के बाद ये समझिए कि औरतों का पर्दा भी शरअन इसी सद्दे जराए के उसूल पर मबनी है कि तर्क पर्दा सबब है मासियत में मुबतला होने का। इसमें भी असबाब की मजकूरा किस्मों के अहकाम जारी होंगे। मसलन किसी जवान मर्द के सामने जवान औरत को अपना बदन खोलना इब्तिदाई गुनाह का ऐसा सबब करीब है कि आदतें अक्सरिया के एतबार से, ठीक है, अक्सर लोगों का जो अल्लाह ताला ने तबीयत बनाई है, वैस्ट मेजोरिटी 99%, ठीक है ना, तो उस पर उसके एतबार से इस पर गुनाह का मुरतब होना लाजमी है, यानी हो ही नहीं सकता कि कोई अपने आप को रोक सके। ठीक है, इसलिए ये तो शरअन जिना की तरह हराम होगी क्योंकि शरअन इस अमल को हुक्म फाहिशा का का दे दिया गया है, इस अमल को हुक्म फाहिशा का दे दिया गया है, अब वो मुतलकन हराम है। ठीक है, अब देखें, जब हमने सूरह नूर के शुरू के अंदर जिना की सजा का पढ़ा था ना, तो वहां पे हमने इस बात को पढ़ा था कि जिना तो वो होता है कि जो कि यानी बहुत ही स्पेसिफिक, ठीक है, तो वो अगर प्रूव हो जाए चार मर्दों के गवाही के साथ या इकरार के साथ कि हाँ जिना किया है, ठीक है, तो फिर तो हद शरी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है या वो प्रूव नहीं हुआ कि भाई इन्होंने ये फेल नहीं किया, ठीक है, तो उस सूरत में क्योंकि यानी बेलिबासी की हालत थी, तो बेलिबासी की हालत तो प्रूव होने के लिए चार मर्दों की जरूरत नहीं होती है ना, चार मर्द गवाहों की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए तो दो दो मर्दों की गवाही जरूरी है या कोई और चीज इसके जरिए से पता लग जाए। ठीक है, तो फिर उस सूरत में ना है तो ये हराम ही, तो उसके ऊपर सजा लगेगी, लेकिन जिना वाली सजा नहीं लगेगी, ताजीरी सजा लगेगी जिसकी की अथॉरिटी अल्लाह ताला ने काजी को और हाकिम को दी है कि आप इसको ताजीरी सजा दे सकें जो आप मुनासिब समझते हो उस जमाने के नॉर्म के हिसाब से या उस जरूरत के हिसाब से, ताकि इस किस्म के गुनाह को भी, ठीक है, बेलिबासी वाले गुनाह को भी मुआशरे से खत्म किया जा सके, ठीक है, इसको भी इबरत का नमूना बनाया जा सके। ठीक है, तो ताजीरी सजा जो है वो हाकिम या काजी देता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या हो सकती है, यानी कोई ये सोच सकता है कि जी अगरचे मामला किसी मासूम के साथ हो, यानी कोई ऐसा हो जो कि यानी यानी मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है ना, जवान है या लेकिन मेंटली डिसेबल्ड है, तो अब ये मेंटली डिसेबल्ड जो होता है इसके ऊपर शरीयत के अहकाम नहीं आते और ये जो है वो गुनाह कर भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि मेंटली डिसेबल्ड है अब ये जो है नाउज बिल्ला बेलिबास रहेगा तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगरचे कभी इस किस्म का मामला है कि भाई कोई मेंटली डिसेबल्ड बंदा है तो उसको मासूम कहा जाएगा, या कोई शख्स अपने नफ्स पर मुकम्मल काबू रखने की वजह से मुतमईन होकर गुनाह से बच जाएगा। ठीक है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मामला हुआ कि वो गुनाह से बच गए जबकि उसने जो जो अजीज की बीवी थी उसने ऐसा मामला किया, तो ये एक एक्सेप्शनल केस थी, लेकिन इसकी वजह से ना शरीयत का हुक्म नहीं चेंज किया जा सकता इसके लिए। यदि हाँ इनके लिए तो ये तो जो अल्लाह के वली बन चुके हैं ना, तो अब इनके लिए जो है ना वो बेलिबासी जायज हो गई है किसी गैर महरम औरत के साथ। ठीक है, यानी किसी अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ इनके लिए बेलिबासी जायज हो गई है। ठीक है, तो ये मामला नहीं होगा। अब इसके आगे है कि मौके जरूरत इलाज वगैरह का मुस्तस्ना होना एक अलग चीज है, इससे असल हुरमत पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो जो हिल्लत है ना वो एक्सेप्शनल केस, सिर्फ इलाज मुआवजे की शदी जरूरत है उसकी वजह से असल हुक्म को आप चेंज नहीं कर सकते। ये मसला औकात और हालात से भी मुतासर नहीं होता, करने अव्वल इस्लाम में भी इसका हुक्म वही था जो आज फिस्क व फुजूर के जमाने में है। ठीक है, उस वक्त भी ये चीज हराम थी अगरचे के ये जना नहीं थी, और आज भी ये हराम है अगरचे के ये जना नहीं है। ठीक है, तो जमाने के तब्दील होने से, या ये कि जी मक्का मुकर्रमा में ये चीज जो है वो हराम थी और इंडिया में ये हराम नहीं होगी, ठीक है, तो जगह चेंज होने से भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दर्जा तर्क हिजाब का यह है कि घरों की चार दीवारी से बाहर बुरका या लंबी चादर से पूरा बदन छुपाकर बाहर निकले। ठीक है, अब ये जो है वो पर्दे के सबसे पहले इन्होंने जो जिना का जुर्म होता है उसका असबाब तरीबा बयान कर दिया ना, अब जो है वो सबब बईदा बयान करें। और सबब बईदा क्या है कि घरों की चार दीवारी से बाहर यानी बाहर निकले, ठीक अपनी चार दीवारी से, लेकिन बुरका और लंबी चादर के साथ पूरा बदन छुपा करके निकले, ये सबब बईदा है फितने का। इसका हुक्म ये है कि अगर ऐसा करना सबबे फितना हो तो नाजायज है, और जहां फितने का खौफ ना हो वहां जायज है। ठीक है, औरतें जो है बुरके के साथ घर से निकलती हैं, अब कोई औरत जो है वो बुरका पहन के निकले लेकिन किसी जगह पर गुनाह के लिए चली जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर तो निकल गई ना, अब तो वो कहीं भी जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी तो है उसकी, लेकिन खरीदारी के लिए भी जा सकती है, बैंक भी जा सकती है, स्कूल भी जा सकती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी जा सकती है, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल और डॉक्टर के पास भी जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ना अब ये चीज जो है वो फितने के खौफ के हिसाब से इसके ऊपर हुक्म लगाया जाएगा। जहां फितने का खौफ होगा तो वहां पर नाजायज होगा, और जहां पर फितने का खौफ नहीं है वहां पर जायज होगा। इसीलिए इसका हुक्म जमाने और हालात के बदलने से बदल सकता है। आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह का औरतों का खुरूज, देखिए कितनी बड़ी मिसाल हदीस मुबारका से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतों का खुरूज इस तरह का मूजब फितना नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बुर्का वगैरह में सारा बदन छुपाकर मस्जिदों में आने की चंद शराइत के साथ इजाजत दी थी। इजाजत दी थी, हालांकि हदीस मुबारका मौजूद है कि ज्यादा अफजल नमाज अपने घर के अंदर है, तो ये पक्की हदीस मौजूद है, लेकिन इजाजत थी मस्जिदों में आने की, और उनको मस्जिद में आने से रोकने को मना फरमाया था। अगरचे उस वक्त भी उनको तरगीब इसी की दी थी कि नमाज अपने घरों में अदा करें, क्योंकि इनके लिए मस्जिदों में आने से ज्यादा सवाब घर में पढ़ने का है, मगर फितने का खौफ ना होने के सबब मना नहीं फरमाया था। नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी जो थी ना वो इतना बड़ा फैक्टर था रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी, कि जिसकी वजह से यानी बहुत जो है वो चीजें कंट्रोल में थी। ठीक है, अगरचे कि उस जमाने में इक्का दुक्का वाकयात हुए थे जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद जारी फरमाई थी, लेकिन ओवरऑल जो है ना मिजाज जो है वो बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार था, और वो उस जमाने के लेवल की बात हो रही है। हमारे एतबार से तो इवन सहाबा का जो दौर था वो अल्टीमेट मुत्तकी और परहेजगार दौर था। ठीक है, लेकिन वो कंपेरिजन टू नबी सल्लल्लाहु दौर बात हो रही है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा किराम ने देखा कि अब औरतों का मस्जिदों में आना फितने से खाली नहीं रहा, अगरचे बुरका चादर वगैरह लपेट कर आए, तो उन हजरात ने बइजमा, देखिए ये होता है इजमाए सहाबा, उन्होंने बइजमा यानी अपने कंसेंसस के साथ और इत्तेफाक औरतों को मस्जिदों की जमात में आने से रोक दिया। ठीक है, इसके ऊपर आज के दौर में खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है कि जी वो कौन होते थे रोकने वाले, और उन्होंने रोक दिया और हम नहीं रोकेंगे और ये वो वगैरह। भाई इस जमाने के उलमा से पूछा जाएगा कि इस वक्त वो क्या समझते हैं, क्या चीज बेहतर है। उस वक्त के जो उलमा थे तो उन्होंने उसको समझा था इस तरीके से कि ये चीज फितने का सबब बन रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के हालात को देखते तो जरूर औरतों को मस्जिदों में आने से रोक देते। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शराइत की बिना पर इजाजत दी थी अब वो शराइत ना रही तो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के फैसले से बदल किया। ठीक है, तो आयशा सिद्दीका जो है वो मिजाज नबी से भी वाकिफ थी, और उन्होंने ऐसी बात करी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोक देते अगर आज के हालात देखते। अरे बुरके की डेफिनेशन क्या है? आजकल बुरका ही फैशन है, वेयरिंग लाइक नॉर्मल क्लोथ्स। जी, बुरके की डेफिनेशन वगैरह सूरह नूर की जो आयात की तफसीर जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आ जाएगी। बाकी ये कि जो बुरका फैशन बन जाए तो वही तो बात है कि जी जो जो करना ना चाहे ना पर्दा तो वो बुरके को भी फैशन बना सकता है। ठीक है, और तो इस वजह से ना ये यानी असल चीज तो भाई अपनी हया होती है और आखिरत का खौफ होता है, तकवा होता है। ठीक है, अगर ये सब ना रहे तो खाली बुरका ओढ़ लेने से तो पर्दा नहीं होता। औरतों के पर्दे का बयान कुरान, ये बस आखिरी पैराग्राफ पढ़ के आज की क्लास खत्म करते हैं कि औरतों के पर्दे का बयान कुरान करीम की 7 आयतों में आया है, 3 सूरह नूर में गुजर चुकी हैं जिसके कि अभी अभी हमने पढ़नी है, और 4 आयतें सूरह अहज़ाब में हैं जिनमें से एक अभी पहले आ चुकी है, एक ज़ेर नज़र है, बाकी आगे आएंगी, जिनमें पर्दे के दर्जात की तायीन और अहकाम की तफसीर और जो इससे मुस्तस्ना इनका मुफसल बयान है। इसी तरह 70 से ज्यादा अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौलन और अमलन पर्दे के अहकाम बताए गए हैं। तो कुल 7 आयतें कुरान में हैं पर्दे के अहकाम से मुतालिक, 70 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इन सबको यकजा मालूम करने के लिए अहकर ने एक मुस्तकिल रिसाला बनाम तफसील अल खिताब फी तफसीर आयात अल हिजाब लिख दिया है, जो बजुबान अरबी अहकाम कुरान सूरह अहज़ाब का जुज होकर शाया हो चुका है। इस तफसीर कुरान में हर आयत की तफसीर तो अपनी अपनी जगह पर आती है, बाकी मजामीन रिसाले के चंद जरूरी इकतबासात यहाँ लिखे जाते हैं। तो चंद एक और पॉइंट है वो इसी वॉल्यूम नंबर 7 से हम पढ़ करके फिर वापस सूरह नूर की तफसीर में जाएंगे। एक और जरूरी ऐलान यह है कि कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि इंशाल्लाह ये आदि जो है उम्रे के सफर पे अभी रवाना हो रहा है, तो परसों यानी वेंसडे को फिर हम रिज्यूम करेंगे। الناس. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.